Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम प्रकाश.
नमस्कार.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश.
इंडियाज बायो इकोनॉमी राइजेस फ्रॉम $10 billion टू ओवर $150 billion इन द पास्ट 10 years, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. Benchmark domestic indices register losses. Sensex drops over 500 points. Nifty closes at 23,526. And the Union Minister Piyush Goyal says India has potential to increase export of organic products to 20,000 crore rupees in the next 3 years.
आर्थिक सुर्खियों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की जैव अर्थव्यवस्था का आकार पिछले 10 वर्षों में $10 अरब से बढ़कर $150 अरब हुआ. घरेलू शेयर सूचकांकों में मंदी का दौर. सेंसेक्स में 500 अंकों से अधिक की गिरावट. निफ्टी 23,526 के स्तर पर बंद. और केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में जैविक उत्पादों का निर्यात अगले 3 वर्षों में बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए होने की संभावना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया विभिन्न वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है. नई दिल्ली में आज जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देश के जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य को परिभाषित करता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जैव अर्थव्यवस्था सतत विकास को आधार देती है और पिछले 10 वर्ष में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश की जैव अर्थव्यवस्था का आकार $10 अरब का था, जो अब बढ़कर $150 अरब से अधिक का हो गया है. श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है. भारत ने दुनिया में फार्मा केंद्र के रूप में एक विशेष पहचान अर्जित की है. उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है और स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है. प्रकाश, भारत का जो पहले एक आम तौर पे माना जाता था कि भारत में रिसर्च, शोध और अनुसंधान जो है उसके मामले में कहीं ना कहीं भारत पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भर था या उतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी, अगर यहाँ पे आज के दौर में रिसर्च और डेवलपमेंट्स में अगर काम हो रहा है और जिसका आकार, जैव अर्थव्यवस्था का आकार 10 वर्षों में 15 गुना अगर बढ़ जाता है, तो ये कितना स्वस्थ संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए और एक आम नागरिक के लिए.
देखिए जी, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसी का ही उसके उसमें दायरे में आता है कि भाई जो चीज़ कुदरतन तरीके से होनी चाहिए, तो उसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं हमारे देश में. एक पॉलिसी इश्यूज, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे आपने जिक्र किया, और तीसरी चीज़ जोड़ लीजिए, पूरे संसार में एक तरह का रुझान होने लगा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों की एक खतरा नज़र आता है. तो उस चीज़ को डील करने के लिए इंडिया ने काफ़ी लीडरशिप शो करी है अपने आप में. तो वो जो लीडरशिप शो करी है, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी है, तो जो टारगेट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में होते हैं सब मुल्कों को दिए जाते हैं, उसमें हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं. जो टारगेट है उससे भी आगे चल रहे हैं. इसी तरह से जिसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, ये सारे उसी विषय में आते हैं. उसमें R&D और पॉलिसी सपोर्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. इंडस्ट्री को भी फिर R&D, उनको भी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही आप ले लीजिए, तो आप चाहें ना चाहें आपको जाना ही पड़ेगा उस तरफ. जो फ्यूल है, जो बायो फ्यूल है, जो अच्छा फ्यूल है, स्वस्थ फ्यूल है, जाना ही पड़ेगा. और इंडस्ट्री के प्रोसेस भी ऐसे, एनर्जी को कम कम कंज्यूम कीजिए।
लेकिन आमतौर पे माना जाता था कि पहले भारत क्या होता था, जो नई तकनीक आती थी वो हम दूसरे देशों से लेते थे और यहाँ पे नई तकनीक का जो विकास होता था या उस पे जो शोध होते थे उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती थी। क्या पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में प्रगति हुई और हम नई तकनीक विकसित करने लगे हैं?
उसमें ये है कि उसके लिए जो फंड चाहिए R&D के लिए
जी,
सरकार तो देती है, उसमें इंडस्ट्री का भी बड़ा रोल होता है। तो ये जो
मतलब सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी आगे आना बेहतर है,
बहुत रोल जरूरी है। जब तक दोनों मिल के नहीं चलेंगे तो ये अभी प्रधानमंत्री जी ने ये इसका आह्वान किया और कहा कि बड़ी तसल्ली पूर्वक बात हुई है, लेकिन काफ़ी अभी लंबा रास्ता है, अभी और कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो खतरे क्लाइमेट चेंज को लेके उसको लेके चल रहे हैं तो उस सूरत में बड़ा ज़रूरी है कि इसी तरफ हमारे और कदम बढ़ते रहें।
The fact that the bioeconomy has risen from 10 billion to 150 billion, and the Prime Minister has also said that we have created a special identity for ourselves as the pharma hub to the world. The Prime Minister's initial comment was that the world is looking towards India today. Now, what are the areas for solutions to various global problems? Surely, we have become the pharma hub. We are providing free treatment to people, crores of people, as you said, for better health infrastructure. That's one way of looking at it. Which are the other solutions that the world is looking at India for?
I'll tell you what. India, if you see India's capability today, it is leading the world in skill. Technology coupled with skill. We have the advantage of being one of the youngest nations. Our institutions are there. So the if globe is looking, global companies are looking towards India to set up what is called GCC, Global Capability Centers. What happens in global capability centers is nothing but top-class research and development. So when the Prime Minister says that India is looking towards the world is looking towards India for R&D, for leading the world, that is what he meant, because the global companies see opportunities here, because you can tap the resource in nowhere in the world today you have such kind of skill available and the policy support to that extent.
नफड़ा लेते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज आधा प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% गिरावट से 528 अंक लुढ़ककर 77,620 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 162 अंक गिरकर 23,526 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप और स्मॉल कैप सूचकांक में सेंसेक्स के मुकाबले अधिक गिरावट दर्ज हुई। बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई।
बेंचमार्क डोमेस्टिक equity indices today ended with losses of over 0.6%, dragged by realty and oil and gas sectors. The 30 share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 528 points to close at 77,620. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, lost 162 points to settle at 23,526. The broader market indices at BSE also ended in negative territory. The mid-cap index declined over 0.9% and the small-cap index fell over 1%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Tata Steel slipped over 2%, Zomato lost more than 1.9%, and Larsen & Toubro dropped over 1.8%. Meanwhile, among the top gainers, Nestle rose over 1.8%, Hindustan Unilever added over 1.5%, and Mahindra & Mahindra gained over 1.3%. In sectoral indices at the BSE, barring FMCG, which added over 0.7%, all other sectors ended in negative territory. In the top laggards, realty shed 2.9%, oil and gas dropped over 2%, and energy fell over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,750 companies declined and 1,211 advanced, while 106 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 34 companies hit their 52-week high, while 95 hit their 52-week low.
नगर डाल लेते हैं रुपया पे अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज मामूली गिरावट से 85.86 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स बढ़त से 109.2 के स्तर पर दर्ज हुआ. प्रकाश, अगर शेयर बाजार को देखें तो शेयर बाजार निरंतर कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहा है, या अगर थोड़ा सा बढ़ता भी है तो लोग मुनाफा वसूली को एक बेहतर उपाय मानते हैं. क्या शेयर बाजार रेंज बाउंड हो गया है जो वैश्विक कारक हैं या घरेलू कारक हैं, या अभी जो पिछले हफ्ते की कुछ जो आशंकाएं थी या गणनाएं थी कि भारत में जो आर्थिक विकास दर है उसमें मामूली सी नरमी नजर आ सकती है?
इसके कई कारण हैं, वैश्विक कारण भी हैं, मेन वही कारण है
जी.
और हमारा डोमेस्टिक उसमें फिर ऐड हो जाता है. कारण यह है कि एक तो ट्रंप साहब ने थोड़ा सा दिक्कत दे रखी है पूरे वर्ल्ड मार्केट में. वो दिक्कत ट्रंप साहब ने ये दे रखी है कि उन्होंने जो एक थ्रेट कही है, कुछ की थी, वार्निंग की है कि मैं तो आने वाले दिनों में बढ़ा दूंगा टैरिफ 20% अक्रॉस द बोर्ड. पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे कंट्रीज, नेशंस, इकोनॉमीज आर वरिड, चिंता कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरह का ट्रेड बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है जीडीपी में
जी.
और एक तो ये कारण है. दूसरा है कि वहाँ का डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत अगेंस्ट ऑल करेंसी, सब करेंसीज में बढ़ रही है. तो ऐसा नहीं कि रुपया ही गिर रहा है या इंडियन मार्केट ही गिर रही है. अगर आप आज का ही देख लें, आज सारा एशियन मार्केट रेड में था. यूरोप में थोड़ी बहुत है, अमेरिका बंद है, आज सारा रेड में था. तो ये जो कंसर्न है, और वहाँ के एक और सबसे बड़ा कारण जो फिलहाल हो रहा है वो जो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जो उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ की इन्फ्लेशन को वो टेम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, वो उम्मीद पे उतनी उनको अब आशंका होने लगी है. तो उसके चलते क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट घटाने में वो उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा. तो जो पहले 5 इंटरेस्ट रेट कट उम्मीद की जा रही थी इस साल, वो अब मात्र 2 तक करने की बात चल रही है.
सो what is your market outlook then, given all these circumstances that you're talking about? What do you think, how will the 2025 span out in the next 10 or say 11 months or so? We haven't had a decent opening so far. There's a lot of volatility that we are seeing. Markets are not sustaining at a higher level. FIIs are still finding India not an attractive bet. And also a lot of big hope that we had from the earning seasons is also not there.
As I said earlier, it's largely got to do with the global factors. And I mentioned the inflation animal called inflation across the world is very much alive and kicking. So as long as the inflation stays high or under kind of a level which is not desirable, causes difficulty, cost of living crisis, then to that extent the interest rates or the bond yields are there, they will remain very high.
Yeah.
So what happens in that case, it is not FIIs pulling out money only from India, it is the shift towards bond yields, interest rates, because it becomes attractive to shift money from equity to debt, especially in the US where the interest rates are so high. And you asked me the outlook. The outlook also will remain volatile, uncertain, because of these factors, because as long as there's inflation in the US especially.
So you said this animal called inflation is
still very much alive and kicking.
It's alive and kicking, and because of which the US has said that only 2, perhaps 2 rate cuts will happen.
What repercussion
will that have on the Indian market?
Simple. The foreign funds will find it attractive to shift because they have no sentiment. Wherever there's a better yield, they'll shift money from equity from India to the US debt
Point
market.
Taken. What, how, according to you, will RBI react?
RBI, it remains to be seen how RBI would react, because what happens is, if there is an interest, we were also expecting rate cut. We are still expecting rate cut from RBI. Now it will become difficult, challenging even for RBI, what to take, because RBI will also keep its, Hindi mein jisko bolte, penny nazar on the Fed Reserve's direction.
लेकिन अगर आज के जो घरेलू शेयर बाजार घरेलू निवेशक संस्थागत और फॉरेन संस्थागत निवेशक के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने तकरीबन 16,700 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करी हालांकि 9,000 करोड़ की बिकवाली भी करी जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अगर 8,500 करोड़ की खरीदारी करी है वहीं 15,700 करोड़ रुपए की बिकवाली भी करी है तो जो बात आप कह रहे थे कि यहां से विदेशी संस्थागत निवेशक बिक्री करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं
ये डेट मार्केट्स जी इक्विटी में नहीं जा रहा
ये जो दौर है वो क्या ट्रंप साहब जब तक 20 जनवरी के आसपास जब आएंगे ये तब दौर कुछ थमने की उम्मीद हो सकती है या अभी इस तरह से ही जो वॉलेटिलिटी का आपने बात करी उथल पुथल अभी थोड़े समय तक हमको देखना पड़ेगा
अभी उथल पुथल चलेगी और ट्रंप साहब के आने के बावजूद बात भी चलेगी क्योंकि खाली ट्रंप साहब ही नहीं है कि ये जो उनकी दिक्कत है और क्योंकि ये मैंने जब जिक्र किया इन्फ्लेशन है और स्लो डाउन भी है ग्लोबल स्लो डाउन भी है अब चाइना अब देखिए हम लोग सब जूझ रहे हैं पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है इन्फ्लेशन से और चाइना को क्या चिंता है उनकी डिसइन्फ्लेशन हो रही है क्यों हो रही है कंजम्पशन है ही नहीं स्लो डाउन है जब चाइना इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी
वहां डिफ्लेशन है उसका भी हमारे पे नकारात्मक असर आ रहा है
क्योंकि क्या होता है कि वहां पे जब डिसइन्फ्लेशन है वहां पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको रॉ मटेरियल इतना सस्ता मिल रहा है सस्ते में बना के डंप करेगा पूरे वर्ल्ड में हमारे यहां भी डंप करेगा तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इसके चलते ये दौर जो है 2025 जो है ये 2025 जो है बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है और हम सबको उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल फिर निदान क्या है हम अभी फिलहाल नजर लगाए हुए हैं बजट के ऊपर
रिजर्व बैंक ने भी पिछले दिनों अपना जो फॉरेक्स रिजर्व था उससे बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर के खुले बाजार में बिकवाली भी करी थी सिर्फ रुपए को संभालने के लिए लेकिन रुपए उसके बावजूद भी लगातार दबाव में है ठीक है मान लिया कि वैश्विक बाजारों का असर है और वैश्विक दौर पर सभी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले काफी दबाव में है क्या बजट अकेला इतना बड़ा कुछ उम्मीद जगाकर आएगा या लेकर आएगा जिसमें कि हम अर्थव्यवस्था के तौर पे और एक मुद्रा के तौर पे
सेंटिमेंट्स भी क्या इम्प्रूव करेगा बजट
देखो बजट बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट
जबकि पिछले वर्ष हमने पूर्ण बजट नहीं देखा था
हाँ तो इससे तो जरूरी ऑब्वियसली बजट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस लेकिन जो फिस्कल मेजर्स होते हैं आपने जैसे जैविक खेती की बात करी आपने हेडलाइंस में पढ़ी अब जैविक खेती अपने आप में थोड़ी बढ़ती है जैविक खेती को किसानों को आपको प्रोत्साहित करना पड़ता है तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि बजट में जैविक खेती के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स आर एक्सपेक्टेड उसका क्या होगा कि तो इसी तरह से जो जो सेक्टर्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं उन सेक्टर्स में अगर सपोर्ट दी जाए और बजट में क्या हमारे यहाँ डोमेस्टिक हम अपना कंजम्पशन बढ़ाएं कैसे बढ़ाएंगे हम लोगों का इनकम टैक्स कम हो जाए ये उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं इंडस्ट्री भी डिमांड कर रही है आज CII की खबर छपी हुई है उन्होंने डिमांड की है कि इनकम टैक्स रेट जब आप कम करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी बढ़ेगी
उम्मीद हमेशा होती है कि मध्य वर्ग को आयकर के मामले में कुछ राहत मिलेगी लेकिन संभवतः शायद सरकार और दोनों वो बहुत ज्यादा उस उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाते
बैलेंस
बनाना मुश्किल होता है चलिए कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं दिसंबर के दौरान सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में कुल निवेश पहली बार 26,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया दिसंबर में कुल मासिक निवेश की राशि बढ़कर 26,459 करोड़ रुपए हो गई नवंबर में यह निवेश राशि 25,320 करोड़ रुपए थी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड में सेक्टोरल और स्मॉल कैप योजना में अधिक निवेश के कारण कुल निवेश बढ़कर 41,156 करोड़ रुपए रहा SIP शायद शेयर बाजार को सबसे ज्यादा संभालने वाला जो था वो म्यूचुअल फंड का ही एक समर्थन था ये जो है कितने दिन तक शेयर बाजार को संभाल पाएगा वैश्विक खतरों के मद्देनजर?
हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर ना, जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है सिप के माध्यम से,
जी जी,
फॉर्चुनेटली वो काफी समझदार मैच्योर होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं कि वो जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर को भी मालूम है। ऐसा नहीं कि अब वो वाले रिटेल इन्वेस्टर नहीं है जो आंख मीच के कुछ भी कर लेते हैं, उनको भी ये मालूम है कि ये साइकिल्स होते हैं, ये साइक्लिकल चीजें होती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आए हुए
वो
हैं।
पैनिक नहीं होते अगर बाजार में कुछ भी गिरावट आती है या उतार चढ़ाव होता
है। पहले पैनिक होते थे, अब नहीं होते,
उनको एक स्वस्थ संकेत है,
स्वस्थ संकेत है
जी।
अब वो कब तक चलेगा ऐसा कोई पैनिक नहीं आने वाला, ये मैं कह
सकता हूँ। It's so important to save through SIPs.
Well, it's again a catch-22 situation when it comes to banks. The deposits in banks are not being...
the interest that they get.
Despite a good interest rate in the banks today, even today, banks, you senior citizen like me, could 7.5% interest rates. You combine it with the power of compounding, it gives me a safe investment. But still, people are getting tempted to go for SIP despite the volatility in the market. So banks on their part are also facing this challenge. Okay. So it's a very interesting situation, I would say.
Okay. Moving on, the Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that organic farming has become a powerful medium for generating better income and employment. Launching the 8th edition of the National Programme for Organic Production in New Delhi today, Mr. Goyal stated that the income of farmers has increased through organic farming. The minister added that currently the export of organic products is worth 6,000 crore rupees, which is expected to rise to 20,000 crore rupees in the next 3 years. Your comment?
3 साल में अगर 6,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 3 गुना से भी अधिक अगर होती है तो किसानों की स्थिति को सुधारने में कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है अगर इसी तरह से चलता है तो?
देखिए, ये आप जैविक खेती की बात कर
रहे हैं? जी बिल्कुल।
अब जैविक खेती में विन विन सिचुएशन होती है। आप मान लीजिए सरकार इस बजट में काफी सारा इंसेंटिव देती है जैविक खेती में। अब जैविक खेती का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर नहीं डालते उसमें। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से जाती है। जितना फर्टिलाइजर कंजम्पशन कम होगा उतनी जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, उतनी सरकार के खजाने में बचत होगी
और निर्यात के दौर
भी होगा
बहुत आसान।
तो ये बड़ा एक तरफ अगर आप जैविक खेती को सब्सिडी देंगे तो उसी तरफ आपकी सब्सिडी बचेगी, ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है।
Union Minister for Road, Transport and Highways, Nitin Gadkari, said that the government has to transform the country from the energy importing country to an energy exporting country. Speaking at an event organized at the National Automotive Test Track in Pithampur, Madhya Pradesh, he said that India is constantly promoting alternative energy sources, describing hydrogen as the fuel of the future. He said that the government and many automobile companies are working in this direction, highlighting the importance of the automobile industry in the country's economic growth. Mr. Gadkari said that this sector has also provided more than 4.5 crore jobs so far.
नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट रही। जापान का निके भी 0.9%, सिंगापुर का स्टेट टाइम सूचकांक 0.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 0.5%, और हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% के नुकसान से बंद हुआ। हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग पूरे स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिलाजुला दौर रहा। लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक लगभग 0.5% तक की बढ़त के दायरे में नजर आए। वहीं जर्मनी का शेयर सूचकांक मामूली गिरावट में रहा।
Stocks displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average gained 0.25%. The S&P 500 ended 0.16%. Meanwhile, the Nasdaq Composite ended nearly flat with a negative bias. Markets remain closed today for a national day of mourning as a mark of respect on the passing away of former President Jimmy Carter. Earlier, Federal Reserve's December meeting minutes showed that officials expressed concern about inflation and the impact that President-elect Donald Trump's policies could have, indicating that they would be moving more slowly on interest rate cuts because of the uncertainty. The participants suggested that the risk of persistently elevated inflation had increased in recent months and stressed the need for monetary policy to help foster financial conditions that would be consistent with inflation returning sustainably to 2%. And that, Prakash, is a long way off. 2%.
Well, it's like this. As I said earlier, the threat of tariff across the board, by 20% what Mr. Trump said, has not only impact on the exporting countries, it also has a huge impact on inflationary situation in the US. Because if you put a tariff on whole lot of items to the extent of 20%, the landed cost, which ultimately has to be paid by the consumers of that country, would go up to that extent with spiraling effect. It could cause further inflation, more headache for the Federal Reserve. So it is not as if winner takes all, which Mr. Trump might think.
Also, the U.S. 10-year Treasury yields have reached levels not seen since April 2024, suggesting expectations of reduced Fed rate cuts, which we've been talking about, two in number, is what the authorities are suggesting. So what's your take on the Treasury yields, the 10-year Treasury yields, the levels that they have reached? Going forward, what are your expectations?
Well, it's a very worrying situation.
Yeah.
Because it means that the inflationary concerns have again resurfaced, and adding to whole lot of economic.
So what's your take from Jan 20 when Mr. Donald Trump comes into power? The tariff war will continue
to heighten? Well, ultimately, Mr. Trump also will realize the implications, because it is not that simple. He will realize the cost it could have on the people of America. If America first policy he has to pursue, then the people of America must also not be made to pay higher cost. So that is what is at the moment the inflationary concerns is putting pressure on the bond yields.
But he's given indication that Chinese goods will have tariff, and India has also been warned.
It's like this. He has said 20% across the board, everywhere from the world. But that is easier said than done, because as I said, the backlash or the pushback might come from American people that look, we are not willing to pay extra cost for our consumption. So let us hope that things may not be as fearful as they are, as they seem.
Okay, moving on, the oil prices rose today. Brent crude was trading at $76.39 per barrel, adding over 0.3%. WTI crude also gained over 0.2% to trade at around $73.48 per barrel, according to the latest reports.
Number डाल लेते हैं सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया. 24 कैरेट सोना 0.6% की बढ़त से 78,450 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पे रहा, जबकि चांदी 1% की बढ़त से 91,990 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी का वायदा कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत बढ़कर 78,162 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी का वायदा भाव 1% से अधिक की बढ़त से 91,930 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. प्रकाश, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में जानकारी देने के लिए धन्यवाद.
शुक्रिया.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
India's bioeconomy rises from $10 billion to over $150 billion in past 10 years, says Prime Minister Narendra Modi. Benchmark domestic indices register losses. Sensex drops over 500 points. Nifty closes at 23,526. And Union Minister Piyush Goyal says India has potential to increase export of organic products to 20,000 crore rupees in the next 3 years. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.